بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। आज शुक्रवार है, फरवरी दिन की 6, शाबान की 12 और मार्च की 26 तारीख। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवे में 41 मीटर बैंड बराबर 7445 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं, जबकि 28 मार्च से हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवे में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकेंगे। श्रोताओ, हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारे पते नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, हमारे आज के कार्यक्रम के रूपरेखा नोट कर लें। सबसे पहले आप सदा की भांति अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात दैनिक कार्यक्रम होगा राजनीतिक चर्चा, उसके पश्चात आप ईद नौरोज के संबंध में सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम, और सभा का अंतिम और आपका मन पसंद कार्यक्रम होगा पत्र संसार। श्रोताओ, यह तो थी हमारी आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, और अब आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से समाचार सुनेंगे। और अब आप रेडियो तेहरान से समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि परमाणु समझौते को पटरी पर लाने के लिए पीड़ित को मुजरिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत में किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे हो गए, 26 मार्च को किसानों ने किया भारत बंद। मकरान सी में इसराइल के एक जहाज को मिसाइल का निशाना बनाया गया। स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकलने में अभी 1 हफ्ते का समय लग सकता है। और अब आप विस्तार से मोहम्मद मेहदी से समाचार सुनिए। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि परमाणु समझौते को पटरी पर लाने के लिए पीड़ित को मुजरिम दिखाने की कोशिश हो रही है। जवाद जरीफ ने ईरान के खिलाफ पश्चिमी अधिकारियों के दावे के जवाब में कहा कि परमाणु समझौते को फिर से पटरी पर लाने के लिए सच्चाई को बदलने की कोशिश की जा रही है। जवाद जरीफ ने गुरुवार को परमाणु समझौते के बारे में पश्चिमी अधिकारियों के ईरान विरोधी बयान के जवाब में अपने ट्विटर पेज पर लिखा, परमाणु समझौते को फिर से पटरी पर लाने के लिए सच्चाई को बदलने और पीड़ित को मुजरिम दिखाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने JCPO की क्रोनोलॉजी के बारे में अपने ट्विटर पेज पर लिंक भी पेश किया, जिसे क्लिक करने से ईरानी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट का वो पेज खुलता है जिसमें परमाणु समझौते को लागू करने की तारीख 16 जनवरी 2016 से 25 मार्च 2021 तक की क्रोनोलॉजी दिखाई देती है। ये क्रोनोलॉजी 16 जनवरी वर्ष 2016 से शुरू होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा ईरान की ओर से परमाणु समझौते के पूरी तरह लागू होने की पुष्टि है। इस रिपोर्ट में आया है कि ईरान की ओर से उठाए गए मुख्य कदम में परमाणु प्रोग्राम को सीमित करना और निगरानी को बढ़ाना शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने अपने विरोध में तेजी लाने के लिए 26 मार्च को भारत बंद किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था। इस अवसर पर पंजाब हरियाणा में रेल सेवाएं ठप हो गईं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे सहित देश में कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम भी किया। किसानों ने सुबह से ही गाजीपुर के पास NH9 बंद कर दिया। किसानों के रास्ते बंद करने के बाद पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिए हैं। भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें माल आदि बंद रखने की अपील की गई थी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को प्रदर्शन करते हुए आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। किसान नवंबर के महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रदर्शन करते हुए भले ही 4 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उनका जोश अभी भी कायम है। किसानों का कहना है कि वे आगे भी ऐसे ही डटे रहेंगे। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। मकरान सी में इसराइल का एक मालवाहक जहाज मिसाइल का निशाना बना। फार्स न्यूज समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मकरान सी में एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था कि मिसाइल हमले का निशाना बना। इस जहाज को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसराइली कंपनी का है, मिसाइल हमले में थोड़ा नुकसान पहुंचा। इसराइली चैनल 12 ने बताया है कि उक्त जहाज तंजानिया से भारत जा रहा था कि मकरान सी में शिकार बनने के बाद दोबारा अपने गंतव्य यानी भारत की ओर रवाना हो गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक उक्त जहाज XT मैनेजमेंट कंपनी का है, जिसका दफ्तर अधिग्रहित फिलिस्तीन में है। पैगम्बर इस्लाम के अपमानजनक कार्टून को दिखाने के खिलाफ ब्रिटिश मुसलमानों का आक्रोश फूट पड़ा। पश्चिमी ब्रिटेन के यार्क शहर में स्थित एक स्कूल में पैगम्बर इस्लाम के अपमानजनक कार्टून के दिखाए जाने के खिलाफ ब्रिटिश मुसलमानों ने अपनी गैरत का परिचय दिया, जिसके नतीजे में उस टीचर को काम से हटा दिया गया जिसने मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया था। इरना के मुताबिक इस अपमानजनक कृत्य के खिलाफ गुरुवार को यार्क शहर के एक मोहल्ले में बेटली नामी स्कूल के सामने मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया और इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लगाए। मुसलमानों ने दोषी टीचर को हटाने की मांग की। एक बच्चे के मां बाप ने स्काई न्यूज को बताया कि बेटली स्कूल में फ्रांसीसी मैगजीन में छप चुके अपमानजनक कार्टून को दिखाया गया, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमानों का आक्रोश फूट पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है कि विश्व के देशों पर एक तरफा तौर पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को रोका जाना चाहिए। राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद ने जनेवा में अपनी 46वीं बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके बड़ी शक्तियों से मांग की है कि एक पक्षीय प्रतिबंध लगाना बंद करें। राष्ट्र संघ ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि वर्तमान समय में प्रतिबंधों को हथकंडे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। प्रस्ताव में विश्व के सभी देशों से मांग की गई है कि हर प्रकार की एकतरफा पाबंदी लगाने को रोका जाए, क्योंकि ये काम राष्ट्र संघ के चार्टर के साथ ही देशों के आपसी मैत्रीपूर्ण संबंधों के भी खिलाफ है। राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद के इस प्रस्ताव का 30 देशों ने समर्थन किया, जिसमें रूस और चीन शामिल हैं। 15 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया, जिनमें यूरोपीय संघ के अधिकांश देश और ब्रिटेन एवं यूक्रेन शामिल हैं। आर्मेनिया और मेक्सिको ने इसमें भाग नहीं लिया। ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव उन देशों के लिए है जो आए दिन दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाते रहते हैं, जिनमें अमेरिका सर्वोपरि है। कुछ पश्चिमी देशों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध यही सिद्ध करता है कि इस प्रस्ताव का संबंध पश्चिमी शक्तियों से है। विश्व में सबसे अधिक प्रतिबंध जो देश लगाता है वो अमेरिका है। ये समाचार आप रेडियो तेहरान से सुन रहे हैं। मिस्र के स्वेज नहर में फंसे हुए एक विशाल मालवाहक जहाज को निकालने और ट्रैफिक के सामान्य रूप से संचालन में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। जहाज को निकालने में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है, जिससे तेल से लेकर कारों तक की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। 2,00,000 टन भारी, 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा यह जहाज अभी भी दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में फंसा हुआ है और उसके सुचारू रूप से संचालन में 1 हफ्ता या उससे भी अधिक समय लग सकता है। जहाज के फंसने के बाद से दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। यूरोपीय कंपनियों के लिए वस्तुओं की आपूर्ति में देरी की आशंका है जो एशियाई देशों से होने वाले आयात पर निर्भर हैं। यूरोप के वो उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे जो महामारी के दौरान ऑनलाइन खरीद के शौकीन बन गए हैं। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन व यमनी वार्ताकार पक्ष के प्रवक्ता ने पश्चिमी मारिब के इलाके में आजाद होने की खबर दी है। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने गुरुवार को कहा कि मारिब में सऊदी गठबंधन फोर्सेस के रणनीतिक केंद्र यमनी फोर्सेस के नियंत्रण में आ गए हैं और मारिब में हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यमन जंग का स्तंभ मारिब है। अमेरिका को अब ये बात समझ में आ गई है कि यमन जंग में उसका या इसराइल का कोई फायदा नहीं है। मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि हम आरामको को निशाना बनाते रहेंगे चाहे इससे पूरी दुनिया की जरूरत पूरी हो और जब तक जंग जारी है सैन्य ऑपरेशन जारी रहेगा। ये हम यमन पर हर हमले का जवाब मिसाइल से देंगे। इस बीच यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के प्रवक्ता ने अलमयादीन टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि यमन के मामले में ईरान किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहा है बल्कि हमलावर देश हैं जो यमन संकट को ईरान से जोड़ रहे हैं और अपने फैसले की प्रक्रिया में पश्चिम को हस्तक्षेप का मौका दे रहे हैं। और अंत में ये समाचार कि अमेरिका ने दो इराकी वेबसाइटों को बंद कर दिया है। अमेरिकी विधि मंत्रालय ने दावा किया है कि इराकी हिजबुल्ला इन साइटों का दुरुपयोग कर रहा था। प्राप्त समाचारों के अनुसार अमेरिकी विधि मंत्रालय ने एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने इन साइटों का नाम पहले आतंकवाद की सूची में रखा था और इस दावे के साथ अमेरिकी विधि मंत्रालय ने इन साइटों को बंद कर दिया कि इराक का हिजबुल्ला इन साइटों का दुरुपयोग कर रहा है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा की।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 497 दिनों बाद किसी विदेश यात्रा पर हैं और वो भी अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की यात्रा।
और फिर बात करेंगे यमन युद्ध के 6 वर्ष पूरे होने पर यमन संकट की ताजा स्थिति के बारे में।
عام الصمود اليمني السادس في مواجهة العدوان السعودي।
और फिर चर्चा करेंगे अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में हुए बेनतीजा चुनाव के संबंध में।
بعد فرز 90% من اصوات الناخب।
और अंत में चलेंगे कश्मीर जहां नई दिल्ली सरकार द्वारा इस राज के लिए पेश किए गए बजट और किसानों के भारत बंद के बारे में हमारे संवाददाता आपको विस्तार से बताएंगे।
इस वर्ष जो बजट नई दिल्ली ने कश्मीर के लिए रखा है उससे तरक्की की हर राह मुमकिन हो सकेगी।
तो सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल चुनाव के बीच 497 दिनों के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर पहुंचे हैं। इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी विदेश यात्रा के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं, इस बार वो कोरोना महामारी के कारण 497 दिनों बाद किसी विदेश यात्रा पर हैं और वो भी अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की यात्रा। इससे पहले नवंबर 2019 में नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की यात्रा की थी। नरेंद्र मोदी ने 15 जून 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब से नवंबर 2019 के बीच उन्होंने 96 देशों का दौरा किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च की सुबह बांग्लादेश पहुंचे, जहां उनका स्वागत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। भारत के प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बांग्लादेश में निराशा बढ़ी है। वहीं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा चुनाव भी हैं, जिसके पहले चरण के मतदान के समय मोदी बांग्लादेश में ही रहेंगे। मोदी के इस दौरे के कई तरह के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। वैसे ये बताते चले कि ये महीना बांग्लादेश में 3 खुशियां मनाने का महीना है। इसी महीने में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का जन्म दिवस है और उसे देखते हुए बांग्लादेश मुजीबुर रहमान सम्मान में मुजीब दिवस मना रहा है। इसी महीने बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह है और वो भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों की गोल्डन जुबली भी मना रहा है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान मथुआ समुदाय के संस्थापक हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थली जाएंगे। वैसे भारतीय मीडिया मोदी की बांग्लादेश यात्रा में जिस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहा है वो है हरिचंद ठाकुर की जन्म स्थली पर उनका जाना। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि क्योंकि बंगाल में मथुआ समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और 70 विधानसभा सीटों पर उनके वोटों का प्रभाव है, इसलिए मोदी अपनी यात्रा में और ठीक उसके पहले चरण की वोटिंग के समय मथुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली में मौजूद रहेंगे। टीकाकारों का कहना है कि इससे मोदी एक तीर से दो निशाने लगाएंगे। वैसे बता दें कि भारत में नागरिकता संशोधन कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीति या फिर बीजेपी का मुसलमानों के प्रति रुख, इन सभी ने कई बार बांग्लादेश को असहज परिस्थिति में डाल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को विभिन्न सुविधाओं का विस्तार देने के बदले बांग्लादेश को क्या मिला। इस बारे में बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन का मानना है कि भारत को वो सब कुछ मिल गया है जो वो चाहता था, लेकिन बांग्लादेश को बदले में कुछ भी नहीं मिला, जिससे यहाँ की आम जनता में निराशा बढ़ी है। इसी तरह ढाका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की प्रोफेसर लैलाफर यास्मीन का मानना है कि भारत बांग्लादेश की चिंताओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि भारत के साथ उसके द्विपक्षीय रिश्ते बहुत सकारात्मक दौर में है। बांग्लादेश 1974 में भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच हुए जमीनी सीमा समझौते को लागू किए जाने का उदाहरण देता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमिन का कहना है कि भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्तों में कुछ भी असंतोषजनक नहीं है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते को देखते हुए जो अनसुलझे मुद्दे हैं वो भी जल्दी ही सुलझ जाएंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश की सरकार को जमीनी सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए और असंतोष के कारणों पर भी ध्यान देना चाहिए।
और अब चलते हैं यमन और बात करते हैं यमन युद्ध के 6 वर्षों तक जारी रहने के बाद अब क्या हाल है। इस बारे में सना से IRIB के संवाददाता अब्दुल्ला अली यूसुफी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद अली कुम्मी की आवाज में।
यमन के खिलाफ सऊदी अरब द्वारा आरंभ किए पाशविक हमलों को 6 वर्ष का समय बीत रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद और घायल हुए हैं। इस मुद्दत में 43,000 से अधिक यमनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में लगभग 9,000 यमनी बच्चे और 5,000 महिलाएं शामिल हैं। 6 साल में सऊदी अरब के लिए युद्ध की उपलब्धि, बच्चों की हत्या, विस्तृत पैमाने पर घरों व मकानों को तबाह करना, भूखे लोगों और मानवीय अपराधों की संख्या में वृद्धि रही है, परंतु सऊदी अरब किसी भी सैन्य लक्ष्य को प्राप्त न कर सका। इस सरकार ने आम लोगों को निशाना बनाया और हमारे देश का अन्यायपूर्ण परिवेष्टन किया, जो बहुत सी त्रासदियों के घटने का कारण बना। एक यमनी महिला कहती है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें मानवीय, नैतिक और धार्मिक मूल्य से दूर दूर का संबंध नहीं है, जबकि यमनी जनता ने सिद्ध कर दिया कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है और अदम्य साहस के साथ अतिक्रमणकारियों के मुकाबले में डटी हुई है। युद्ध और परिवेष्टन का जारी रहना इस बात का कारण बना है कि यमन की मिजाइल इकाई ने 75 से ज्यादा बैलिस्टिक मिजाइलों और 270 से ज्यादा ड्रोन विमानों से सऊदी अरब के आर्थिक और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसी प्रकार इन मिजाइलों और ड्रोन विमानों से सऊदी अरब के जद्दा और इस देश के दक्षिण में स्थित हवाई अड्डों पर हमला किया। इस बीच यमन के सैन्य उद्योग ने ध्यान योग्य प्रगति कर ली। इस समय 3 बैलिस्टिक मिसाइलों और 7 हेलीकॉप्टरों का अनावरण किया गया। इसी प्रकार यमनी सेना ने सऊदी अरब के अंदर महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पहचान कर ली है।
और अब बात करते हैं ज़ायूनी शासन में हुए चुनाव की। इसराइल में एक बार फिर चुनाव बिना नतीजे के समाप्त हो चुके हैं। ज़ायूनी शासन में राजनीतिक संकट का क्या है मुख्य कारण, इस बारे में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं फिलिस्तीन से IRIB के संवाददाता इब्राहिम अहमद हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी की आवाज में।
बाद फर्ज 90% من اصوات الناخب
अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में नेसेट के सांसदों की नियुक्ति के लिए होने वाले चुनावों की मतगणना से यह स्पष्ट हो गया है कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में पार्टी को सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटें नहीं मिल पाई हैं। इस आधार पर नेसेट का गठन नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए कम से कम 61 सीटों की जरूरत है। चुनाव परिणाम इसी तरह इस बात के सूचक हैं कि नेतन्याहू सहित समस्त दक्षिणपंथी ज़ायूनी पार्टियों ने 59 सीटों पर सफलता प्राप्त की है। इसके बावजूद वे सरकार नहीं बना सकती। नेतन्याहू सरकार बनाने के लिए आवश्यक 61 सीटें हासिल न कर सके। अगर दूसरी पार्टियों की सीटों को मिला लें तब 60 सीटें होती हैं, जो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू सरकार गठित नहीं कर सकती। विपक्षी पार्टियों ने घोषणा की है कि वे नेतन्याहू के त्यागपत्र के इच्छुक हैं।
وحصلت احزاب المعارضه
विपक्षी पार्टियों ने 61 सीटें हासिल की हैं, पर 3 पार्टियों में मतभेद है और सरकार बनाने के लिए उनके मध्य एकता नहीं है। चुनाव परिणाम इस बात के सूचक हैं कि ज़ायूनियों ने नेतन्याहू को दंडित किया है क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और ज़ायूनी उन्हें इसराइल में मतभेद और नस्लवाद में प्रतीक का कारण समझते हैं। इसके बावजूद ज़ायूनी शासन के कानून के अनुसार नेतन्याहू को सरकार गठित करने के लिए दूसरी पार्टियों से वार्ता करने का अवसर दिया जाएगा। मेरे विचार में 5वां चुनाव भी होने वाला है। उसका कारण भी इसराइल के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है जो नेतन्याहू की नस्लवादी नीतियों के कारण अस्तित्व में आई है।
खालिद सबरना, खबर गुजारी, सदा वसीमा, फलस्तीन।
और अब रुक करते हैं भारत का और चलते हैं कश्मीर। दिल्ली सरकार द्वारा कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर इस राज्य के उपराज्यपाल ने उसे उम्मीदों भरा बताया है। वहीं किसानों के भारत बंद का कितना हुआ असर, इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर यूटी के LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस वर्ष जो बजट नई दिल्ली ने कश्मीर के लिए रखा है उससे तरक्की की हर राह मुमकिन हो सकेगी। श्रीनगर में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों से उनके अनुसार कश्मीर में तैमीर तरक्की के नाम पे सिर्फ लूटा गया और कश्मीर में कहीं पर भी तैमीर तरक्की नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों का विश्वास जीतने के लिए यहां पर तैमीर तरक्की जरूरी है और जो योजनाएं नई दिल्ली ने बनाई है उस पर अब अमल शुरू होगा और हमारा ये मानना है कि कश्मीर में शांति भी आएगी और यहाँ पर तरक्की भी होगी। इस बीच नई दिल्ली में किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया था उसकी मिलीजुली प्रक्रिया सामने आई है। पंजाब और अन्य राज्यों में इस बंद का अच्छा खासा प्रभाव नजर आ रहा है, परंतु सरकार का कहना है कि इस बंद से कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। किसानों ने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
भाई साहब भारत बंद करने के लिए हमको मजबूर होना पड़ा। जो देश के BJP सरकार है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो पहले से लेकर के खेती की विरोध में, हमारी नस्लों फसलों के विरोध में जो कानून तैयार किए हैं उसी की विरोध में आज हमको यहाँ बॉर्डरों पे बैठे हुए 120 दिन हो गए हैं। और जो मोदी सरकार है अपना हैंकड़ रवैया पहना रही है, वो एक पासे तो हमको अन्नदाता बोलती है। जो देश का अन्नदाता होता है वो नाज तो पैदा कर सकता है पर अपनी जमीनें किसी भी कीमत पर कारपोरेट घरानों को नहीं दे सकता है।
इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और अब जो संख्या 2 डिजिटों में थी अब ये संख्या एक बार फिर 3 डिजिटों में आनी शुरू हो गई है। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہوگا پتر سنسار، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے نوروز کے اوسر پر ایک وشیش کارکرم۔
دوستو، نوروز یعنی ایرانی نو ورش کے افسر پر وشیش کارکرم کو لے کر سواتیوں کا ایم رضوی اپستھت ہیں۔ آج ہم نوروز کے درشن کے بارے میں چرچا کریں گے۔
لوگوں کے لیے بہار کے موسم کا سندیش یہ ہے کہ انسان بھی پرکرتی سے کم نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی شریشٹھ ہے۔ اس لیے اگر بہار آئے اور سوئی ہوئی پرکرتی جاگ اٹھے، لیکن ہم لاپرواہی کی نیند سوتے رہیں اور ایرشیا و دویش سے ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہو، تو یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ اسی سندرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں پریورتن سے انجان رہے، وہ سب سے لاپرواہ لوگوں میں سے ہے۔
باہر کی سانسیں انسا کی سانسوں کی طرح بے جان پرکتی میں جان ڈال دیتی ہے، اور موسیٰ کی چھڑی کی طرح اندھیرے کے دل کو چیر دیتی ہے، تاکہ چاہنے والوں کے لیے مصر کو اپہار سوروپ پیش کرے۔ بہار کی آمد سے کلیوں کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے، اور بہار کی ہوا سے بیج سردیوں کی گہری نیند سے جاگ اٹھتے ہیں۔
بہار انسان کو جگانے اور ایشور کو پہچاننے کا ایک اچھا بہانہ ہے۔ ایشور نے ہمیں جگانے کے لیے ہزاروں گھنٹے کا الارم لگایا ہے۔ کسی بھی بچے کا جنم، کسی پری کی موت، کسی بھی چہرے پر پڑنے والی شکن، کسی بھی طاقت کا ادے اور پتن، کسی بھی خوشی کا ہونا یا اس کا چھن جانا، اور ہر سال پتجھڑ تتھا بہار کا موسم، یہ سبھی وہ گھڑیاں ہیں جن میں انسان کو جگانے کے لیے الارم لگایا گیا ہے۔
بہار کا جلوہ ادویتیہ نرماتا کی شکتی کا جلوہ ہے۔ بہار کی روح ایکیشوروار، چنتن اور تازگی کی روح ہے۔ بہار منشیہ کو ایشور کی پہچان، پنروتھان، کرانتی، وکاس اور اتکرشتتا کا پاٹھ پڑھاتی ہے۔ بہار ایسے ایشور کی شکتی سے جنم لیتی ہے جس نے اپنی مہان شکتی سے پرکرتی کو نیا جیون پردان کیا ہے۔ بہار انسان کا دھیان ایسے سنسار کی اور آکرشت کرتی ہے جو ہر شن بدلتا ہے۔ یہ اس مہان ایشور کی نشانی ہے جو اپنی شکتی اور گیان سے پورے سنسار کو اتکرشتا کی اور مارگدرشت کرتا ہے۔
بہار اور نیا سال انسانوں کو پنرجنم کا سندیش دیتے ہیں، اور پرکرتی ایشوری پنروتھان کی ایک چھوٹی سی تصویر کو درشاتی ہے جس کا ہر سال انسان درشن کرتا ہے۔ پرکرتی کے دل میں پنروتھان کی کئی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے بعد نرنے کے دن کے بارے میں سندیہ کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ پوتر قرآن میں کئی استھان پر متو کے بعد پرتھوی کے پنروتھان کا ذکر موجود ہے۔ ادھارن کے طور پر ایشور نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 9 میں کہا کہ ایشور وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ بادلوں کو استھانانترت کر سکے، اس کے بعد ہم نے ان بادلوں کو مردہ زمین کی اور بھیجا، اور اس کے دوارا ہم نے مردہ زمین کو پنرجیوت کر دیا۔ پنروتھان بھی یہی ہے۔
جن آیتوں میں پرکرتی کے پنروتھان کا ذکر ہے، واستو میں ان میں شرد ریتو اور سردیوں کا موسم بیت جانے کے بعد بہار میں پرکرتی کے کھلنے کا الیکھ ہے۔ حالانکہ ان آیتوں کی اتہ گہرائی سے پتا چلتا ہے کہ ایشور پرکرتی کے پنرجیون دوارا اپنی اسیم شکتی کی تصویر پیش کرنا چاہتا ہے، और लोगों को याद दिलाना चाहता है कि वे प्रलय के बारे में सचेत रहें। जैसा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, जब भी वसंत ऋतु को देखो तो मौत के बाद जिंदा होने और प्रलय को याद करो।
बहार प्रकृति में क्रांति लाती है और गुल बूटों में जान फूंक देती है। बहार आती है ताकि हमें याद दिलाए कि सृष्टि प्रदूषित नहीं है और हमें अपने घरों की सफाई के साथ ही अपनी आत्माओं को भी शुद्ध करना चाहिए, इसलिए कि प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक शुद्धता से समाज अच्छाई और शांति की ओर बढ़ता है। दिल को गंदगी, ईर्ष्या और दुखों से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वो बहार की आमद को समझने के योग्य हो सके, ऐसी बहार जो हमें सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियों के लिए आमंत्रित करती है और हमारे लिए सबसे अच्छे क्षण लाती है।
बहार प्रकृति से सीखने का एक अवसर है। इंसान शुरुआत से ही प्रकृति से जो सीख हासिल करता रहा है वह दान देना, उदारता, करुणा और प्रेम है। बहार हर पल वृक्षों की शाखाओं और फूलों की पंखुड़ियों के लिए प्रेम की बयार बहाती है ताकि प्रकृति फिर से जिंदा हो जाए और अपने दोस्तों को अपनी समस्त पूंजी पेश कर दे।
इंसान सृष्टि के गुलदान का सबसे श्रेष्ठ फूल है। गतिशीलता और परिवर्तन उसके अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए जरूरी है, इसलिए नव वर्ष के आगमन से वो भी खुश और प्रसन्नता से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है।
मौसम का परिवर्तन एकेश्वरवाद का पाठ है। इससे यह सीख मिलती है कि समस्त परिवर्तनों का स्रोत ईश्वरीय शक्ति है। केवल वही है कि जो इंसान के रुझानों में परिवर्तन ला सकता है। बहार के साथ साथ हमारे वजूद को भी अच्छाई और सुंदरता प्रदान करता है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई नौरोज और नव वर्ष के आगमन की दुआ के बारे में ये कहते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन के साथ साथ शुरू होने वाला हिजरी शमसी वर्ष एक अवसर है। इस अवसर पर इंसान अपने भीतर परिवर्तन कर सकता है और अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति में सुधार भी कर सकता है, और वर्ष के आरंभ होने के समय पढ़ी जाने वाली दुआ भी हमें इसी परिवर्तन का पाठ देती है। हम इस दुआ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्थिति और हमारे भीतर एक पवित्र और अच्छा परिवर्तन कर दे। परिवर्तन उत्पन्न करना ईश्वर का कार्य है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने भीतर, अपने जीवन और दुनिया में परिवर्तन के लिए प्रयास करें। दिल और मन की ताजगी और सजावट पवित्रता का प्रमाण है, इसीलिए उसे घर और जाहिरी सजावट में सीमित नहीं रहना चाहिए। निसंदेह नव वर्ष के शुरू में आत्मा और दिल की पवित्रता समस्त पवित्रताओं में सर्वोपरि है, ताकि इंसान का अस्तित्व समस्त गंदगियों, द्वेषों, बुराइयों और मन मुटाव से साफ हो जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में ईश्वर फरमाता है कि ईश्वर क्षमा याचना करने वालों को पसंद करता है और पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है।
नौरोज के त्योहार की एक महत्वपूर्ण ईरानी परंपरा के जिस पर इस्लाम का रंग चढ़ा हुआ है, नौरोज की छुट्टियों में परिजनों और संबंधियों से मुलाकात है। विभिन्न परंपराओं के बीच सगे संबंधियों से मेल जोल की परंपरा का विशेष स्थान है। ये परंपरा इस्लामी और ईरानी संस्कृति के निकट संबंधों का कारण भी बनी है। इस्लाम में दूसरों, विशेष रूप से रिश्तेदारों की सेवा पर अति महत्वपूर्ण बल दिया है। जब बात सहायता की होती है तो हमेशा वित्तीय सहायता मन में नहीं आनी चाहिए। पारिवारिक मतभेदों का समाधान करना, रोजगार और शिक्षा के संबंध में सलाह देना, लड़के और लड़कियों की शादी के लिए प्रयास करना गैर वित्तीय सहायताओं के कुछ उदाहरण हैं। ملاقات سے ایک دوسرے کی سمسیاؤں سے اوگت ہونے کا اوسر پراپت ہوتا ہے. اس استھتی میں اگر سمبھو ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی سہایتا کی جا سکتی ہے. وتیہ سہایتا دوسروں کی سہایتا کا ایک ادھارن ہے. سمبندھی آپس میں جتنے نکٹ ہوں گے ان پر ایشور کی کرپا بھی اتنی ہی ادھک ہوگی. اسی لیے ضرورت مند رشتے داروں سے میل جول کو پراتھمکتا دینی چاہیے.
वसंत ऋतु के आरंभ में ईरानी परिवार समाज में निर्धन अनाथों और ज़रूरतमंदों की सहायता करके उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करते हैं. ईरानियों का ये मानना है कि वसंत ऋतु के आरंभ में इन लोगों की सहायता से उनकी खुशियों में वृद्धि होती है. इस प्रकार वे अपने जीवन को खतरों से सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरतमंदों की दुआएँ प्राप्त करते हैं. दोस्तों, हमें ना ही सर्दियों की तरह होना चाहिए कि हम دوسروں کو کپ کا پانے پر مجبور کر دیں، اور نہ ہی گرمیوں کی طرح ہونا چاہیے کہ دوسروں کو جلا ڈالیں، بلکہ ہمیں بہاری ہونا چاہیے تاکہ دوسروں کا اتھان کریں اور ان کا وکاس کریں. آئیے نوروز کی تازگی حاصل کرنے کے لیے ایک افسر اسے سمجھیں اور اپنی جیون شیلی پر نظر ڈالیں، اور ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا کر سمست مانوتا کی بھلائی کے لیے پریاس کریں. तो मित्रों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है. आपसे अनुमति चाहते हैं. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए. और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम.
पत्र संसार. दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है. अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए.
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे.
और सदा की भांति आपके कुछ पत्र, ईमेल और कमेंट्स कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे. तो सबसे पहले हम शामिल कर रहे हैं सुरेश अग्रवाल के ईमेल से. लिखते हैं कि दिनांक 26 फरवरी का पूरा प्रसारण अंक भी पूरे मनोयोग से सुना. साप्ताहिक कार्यक्रम पत्र संसार के बीच पेश सांस्कृतिक खबर के तहत ईरानी शहर बम स्थित अर्घ का किला, जो कि वर्ष 2003 में आए भूकंप में नष्ट हो गया था, पर दी गई जानकारी काफ़ी दिलचस्प है और महत्वपूर्ण लगी. और वास्तव में भारत की तरह ईरानी संस्कृति भी काफ़ी समृद्ध है. कार्यक्रम के अंत में ननकाना साहिब पंजाब से श्रोता भाई मेयर अब्दुल सत्तार की आवाज़ सुनकर भी हमें अपनापन महसूस हुआ. मैं अपने पंजाबी भ्रादा का खैर कदम कर रहा हूं. धन्यवाद.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश अग्रवाल साहब. और आपने जिस तरह पंजाबी लहजे में स्वागत किया पाकिस्तानी श्रोता का, उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, इसी तरह से पत्र संसार के अंतर्गत जो सांस्कृतिक खबर सुनाई जाती है वो भी आपको अच्छी लगी, ये जानकर भी हमें खुशी हुई और हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह हमें अच्छे अच्छे ईमेल भेजते रहें।
कृपाराम कागा ने बाड़मेर राजस्थान से भेजा है ईमेल। लिखते हैं कि मैं रेडियो तेहरान हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम वेबसाइट पर नियमित देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होते हैं। खेत के साथ लिखना पड़ रहा है कि समय के अभाव के कारण नियमित पत्र व्यवहार नहीं कर पा रहा हूं। मैं रेडियो तेहरान हिंदी सेवा को सुझाव देना चाहता हूं। लंबे समय से इनामी मुकाबला नहीं हुआ है, एक बार अपने श्रोता मित्रों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करें। मुझे उम्मीद है आप अपने श्रोताओं को एक दिन जरूर खुशखबरी देंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृपाराम कागा जी, आप हमारे बहुत ही अच्छे और बड़े ही पुराने श्रोता हैं और ये जानकर हमें दुख हुआ कि आपको हमसे निरंतर पत्र व्यवहार के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहरहाल आप कुछ समय निकाल कर हमसे संपर्क ज़रूर बनाए रखें। और जहाँ तक इनामी मुकाबले की आपने बात की है तो भविष्य में इसकी कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे पहले जो इनामी मुकाबले आयोजित होते रहे हैं उसके सिलसिले में श्रोताओं में काफ़ी नाराज़गी जैसी बात भी हमें दिखाई पड़ी थी, क्योंकि कई श्रोताओं का, बहुत से श्रोताओं का ये कहना होता था कि जो समय सीमा है वो कम है, उसको बढ़ाया जाए और उनको जवाब देने में समय लगता था। अलबत्ता ये पहले की बात है जब पत्रों के माध्यम से ही जवाब भेजते थे श्रोता, अब तो ईमेल के माध्यम से तुरंत आ सकता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि भविष्य में आपके इस सुझाव पर अवश्य विचार किया जाएगा।
तो अब बारी है ईरानी संस्कृति से जुड़ी एक खबर की
जी।
तो ये बता दें, ये जो खबर है इसमें ईरान का कहना है कि इराक में स्थित पर्शियन आर्कियोलॉजी मास्टरपीस ताक कसरा, जिसे आर्क ऑफ सिटी साइफन के नाम से भी जाना जाता है, उसका जीर्णोद्धार किया जाए, और परंतु ये तभी मुमकिन होगा जब बगदाद आधिकारिक तौर पर तेहरान से ऐसा करने की अनुमति देगा
जी।
ताक कसरा सासानी शासन काल के पर्शियन स्मारक का अवशेष है जो तीसरी से छठी शताब्दी से संबंधित है। ये इराक में स्थित आधुनिक शहर सलमान पाक के निकट स्थित है। ये प्राचीन शहर सिटी साइफन की एकमात्र बची हुई संरचना है। ये मेहराबदार वास्तुकला इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है और ये दुनिया में अप्रतिम ब्रिक वर्क का सबसे बड़ा पीस है। पिछले कई वर्षों के पश्चात इराकी अधिकारियों ने ईरानी सांस्कृतिक विरासत अधिकारियों को इस ऐतिहासिक स्मारक के पुनर्निर्माण करने तथा उसे बचाने में सहायता करने के लिए बुलाया है। हालांकि ईरान का कहना है कि ये टीमों को तभी भेजेगा जब इराक आधिकारिक निमंत्रण देगा
जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपके समाचार के लिए। ताक़ी कसरा प्राचीन ईरान का महत्वपूर्ण अवशेष है, बहुत अच्छी धरोहर है और जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच संबंध भी बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद यही रखी जा सकती है कि ईरान और इराक के आपसी सहयोग से इस प्राचीन इमारत यानी ताक़े कसरा का पुनर्निर्माण होगा और दुनिया को प्राचीन ईरान के एक अच्छे अवशेष को देखने का फिर से मौका मिलेगा।
तो दोस्तों, सांस्कृतिक खबर के बाद अब लौटते हैं श्रोताओं की ओर और कुछ कमेंट्स शामिल करते हैं। JCPOA में अमेरिका की वापसी का रास्ता आसान है, ईरान बस, इस समाचार पर परवीन लिखते हैं, यूरोपीय संघ JCPOA द्वारा पालन करने और उनके गैर अनुपालन के लिए मुआवजे का भुगतान करके शुरू कर सकता है, जिसने विकास के लिए ईरानी की क्षमता को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की कोई गारंटी नहीं है कि वो अनुपालन करेगा या वो भविष्य में इसी तरह के स्टंट नहीं करेगा। यदि यूरोपीय संघ अनुपालन करने में विफल रहता है तो संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों के साथ ईरान को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में रहना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। देखिए, ईरान ने अपना रुख जो है वो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक अमेरिका JCPOA या परमाणु समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं करता है, अपनी कटिबद्धताओं को पूरा नहीं करता है, जो वादे उसने समझौते के अंतर्गत किए हैं उन्हें पूरा नहीं करता है, तब तक ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं को जो उसने कम किया है उन्हें सामान्य रूप में नहीं लाएगा। तो अब ये सब कुछ अमेरिका पर निर्भर है कि वो इस समझौते को बाकी रखना चाहता है या नहीं चाहता है, और किसी हद तक यूरोपीय देश भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें भी अमेरिका पर दबाव डालकर इस समझौते के पालन के लिए उसे मजबूर करना चाहिए ताकि ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता बाकी रहे।
ईरान का ऐलान IAEA को अगले 3 महीनों तक कैमरों तक पहुंच का अधिकार नहीं, अगले 3 महीने के भीतर पाबंदियां नहीं हटी तो ये सूचनाएं मिटा दी जाएंगी। इस पर जमाल लिखते हैं, सर इस 3 महीनों के दौरान प्रतिबंधों को आसानी से नहीं उठाया जा सकता है, अपने प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए अभी से तैयारी कर लें, कैमरों को पूरी तरह से हटा दें क्योंकि उनके स्थान स्पष्ट हैं और आसानी से पता लगाया जा सकता है और उन्हें आसानी से टारगेट भी किया जा सकता है, हालांकि वे वास्तव में आपकी सुविधाओं को टारगेट करते हैं। आप सभी पश्चिमी कैमरा, ब्लूटूथ प्रिंटर, सेलफोन, टीवी को हटा दें, सब कुछ आसानी से पता लगाया जा सकता है और टारगेट किया जा सकता है। अपनी कारों से भी GPS हटा दें, बाकी आपको बेहतर पता है। इस पर इन्होंने कंक्लूजन भी दिया है, लिखते हैं, शत्रु के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, प्रतिबंध या आपका 99% समृद्ध यूरेनियम? ये समझना बहुत ही आसान है, इसलिए कैमरे हटाओ और निरीक्षण बंद करो, लेकिन प्रतिबंधों को आसानी से नहीं उठाया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जमाल साहब। देखिए, आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है कि अमेरिका ने और इसी तरह से यूरोपीय देशों ने पिछले कई वर्षों में यही साबित किया है कि वो ईरान पर से प्रतिबंध नहीं हटाना चाहते बल्कि उसे दबाव में रखना चाहते हैं। ट्रंप ने तो अधिकतम दबाव की बात की थी, लेकिन ईरान ने भी इन वर्षों में ये साबित किया है कि प्रतिबंधों से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है बल्कि वो अधिक आत्मनिर्भर होता जा रहा है। बहुत से क्षेत्रों में उसने जो प्रगति की है उसने दुनिया को चौंका दिया है। तो अगर प्रतिबंध नहीं हटते हैं तो ईरान ने जैसा कि कहा है कि 3 महीने का समय है उनके पास, जिसमें से अच्छा खासा समय गुजर भी चुका है, तो फिर ईरान जो कैमरे हैं उनके अंदर जो सूचना है उन सब को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिलीट कर देगा आज के शब्दों में, और उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो अगर वो चाहते हैं कि ईरान के साथ सहयोग करें परमाणु समझौते के मामले में, तो फिर उन्हें जो अवैध रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं, अत्याचारपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें खत्म करना ही होगा।
तो दोस्तों, अब बारी है हमारे एक दोस्त की आवाज सुनना है, और ये
हमारे जो श्रोता हैं डॉक्टर कल्बे सिप्तन नूरी हैं, लखनऊ के हैं। इनकी जो बातचीत है बल्कि इनके जो विचार हैं इसका पहला भाग पिछले कार्यक्रम में सुनाया गया था, और इनकी बातचीत का दूसरा भाग पत्र संसार के इस अंक में आपके सामने पेश किया जा रहा है।
आदाब, मैं लखनऊ से डॉक्टर कल्बे सिप्तन नूरी बोल रहा हूँ। आप पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ जो न्यूज़ चैनल्स आते हैं उनका ज़्यादातर समय हिंदू मुस्लिम करवाहट और हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ को दिखाने में बीतता है। इंटरनेशनल न्यूज़ उन पर देखना चाहें तो आपको नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि उनको दिखाने के लिए शायद उनको परमिशन ही नहीं मिलती है या वो निष्पक्षता नहीं मिलती है। लेकिन ये पारस टुडे वेबसाइट जो है, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें मिडिल ईस्ट की खबरें और ईरान की खबरें, सऊदी अरब की खबरें बहुत ही निष्पक्ष अंदाज में दिखाई जाती हैं। तो मेरा 2-3 मिनट लगता है समय, और मुझे पास टुडे वेबसाइट देखकर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के बारे में मालूमात हासिल हो जाती है। ये बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से दिखा रहे हैं, और जिनके पास समय की कमी है वो ज़रूर देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज मैं ईरान रेडियो सुन रहा था तो उसकी साउंड क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी बीबीसी लंदन की होती थी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग इतनी अच्छी खबरें दिखा रहे हैं, निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ थोड़ी सी साउंड क्वालिटी वो भी बेहतर हो जाए तो फिर आपसे और श्रोता जुड़ेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा होगा, मकबूलियत में और इजाफा होगा, लोकप्रियता में और इजाफा होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पास टुडे वेबसाइट इतनी मेहनत और निष्पक्ष तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ दिखाती है कि हम जो ज़ाहिर है कि हम सब बिज़ी लोग हैं तो उसके बावजूद भी हम दो तीन मिनट चार मिनट के अंदर शाम को जब देखते हैं तो हमें दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ और मिडिल ईस्ट की न्यूज़ और बाहर की न्यूज़ उसको हम देखकर हमें हालात का इल्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी मेहनत से हमारे लिए समाचारों को संगठित एकत्र करते हैं और दिखाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोता डॉक्टर कल्बे सिप्तान नूरी लखनऊ के, जो रेडियो तहरान के कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे थे। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो चला है। तो अगले कार्यक्रम और अगली भेंट तक के लिए अपनी दीदी मरियम मेहरदादी और भैया हसन अब्बास को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे अपना मन पसंद कार्यक्रम पात्र संसार, और अब समय मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि परमाणु समझौते को पटरी पर लाने के लिए पीड़ित को मुजरिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। भारत में किसान आंदोलन को चार महीने पूरे हो गए। 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। मकरान सी में इसराइल के एक जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकलने में अभी एक हफ्ते का समय लग सकता है। तो श्रोताओ इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज, शुभ रात्रि। Thank you.